भाइयों, हम आज भारत के नए वर्ष के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। आप तो जब से पैदा हुए तब से जो न्यू ईयर समझते हैं, जानते हैं, वो वही है जो जनवरी 1 को आप मनाते हैं, पर आपका भी अपना एक नया वर्ष होता है। और खास बात है कि अलग अलग राज्यों में वो अलग अलग नामों से जाना जाता है। हम उस दिन बड़े सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारे फंक्शन करते हैं, पर हमें पता नहीं होता है कि वो हमारे नए वर्ष है। वो नए वर्ष सिर्फ इसी क्यों है, जैसे जो जॉर्जियन कैलेंडर में आप 2015 सेलिब्रेट करते हैं आज न्यू ईयर आजकल, इसी तरह आज 2072 विक्रम ईयर है। संस्कृत में जो ईयर है वो संस्कृत में वर्ष, वत्सर, संवत्सर, संवत, अब्द, बहुत सारे नामों से जाना जाता है, इसलिए आपको अलग अलग शब्द मिलेंगे इसमें। विक्रमादित्य का जो बड़े महाराजा रहे उज्जैनी के, उनके राज्य सिंहासन के दिन से ये सेलिब्रेट किया जाता है नॉर्थ इंडिया में। और साउथ इंडिया में शालिवाहन जो हुणों को पराजित करके बहुत बड़े राजा बने, उनके राज्याभिषेक से शालिवाहन संवत्सर साउथ इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा ये नया साल है कि ये युग का, कलि युग का, ये इसी दिन शुरू हुआ था चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। दिस इज द डे व्हेन द कलि युग स्टार्टेड। सो इट इज आज तारीख को 5117 ईयर्स पास्ट स्टार्टिंग ऑफ द कलि युग। और आज के ही दिन सृष्टि की रचना हुई थी, सारे ब्रह्मांड की रचना हुई थी। आज उसको 1,096,80,00,000 करीब है, वो हम अब डिटेल में चर्चा करेंगे। विक्रमी संवत 2072 कल से शुरू हुआ। विक्रमी संवत इज द कैलेंडर एस्टैब्लिश्ड बाय द इंडियन एम्परर विक्रमादित्य ऑफ उज्जैनी। हिस्ट्री में, आपके इंडियन हिस्ट्री में दो विक्रमादित्य आते हैं। एक विक्रमादित्य चंद्रगुप्त मौर्य जो पाटलिपुत्र मगध के राजा थे, बहुत सारे लोग गलतफहमी से उसके साथ कम जोड़ते हैं। ये विक्रमादित्य उज्जैनी के विक्रमादित्य है, जिनके नाम पर आप बहुत सारे स्टोरीज पढ़ते हैं, विक्रम वेताल वगैरह, वो यही विक्रमादित्य है। और जिन्हों जब विक्रमादित्य से पहले शक राजाओं का हमारे यहाँ वो आक्रमण करके शासन करते थे, शक बेसिकली चाइनीज के आसपास एरिया से आए थे, उनको उन्होंने 56 BCE बिफोर क्राइस्ट उनको पराजित किया करके, उसी दिन उन्होंने अपने राज्य अपने सिंहासन पर बैठा था, सम्राट बने थे, तो उसी दिन से उन्होंने अपने नाम पर न्यू ईयर चलाया था, तो उसको हम विक्रमी संवत कहते हैं। बेसिकली नॉर्थ इंडिया में आज भी हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। और भारत में दो तरह के न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाते हैं, जिसको आज आप समझेंगे। आपके खुद के राज्य में भी कौन सा न्यू ईयर होता है आपको पता हो, या बहुतों को पता नहीं है, या बहुतों को पता भी हो। विक्रमी संवत्सर एक लूनर कैलेंडर है, मतलब जो चंद्र के हिसाब गति के हिसाब से चलता है। कल जो डेट है था वो शुक्ल पक्ष था प्रतिपद, शुक्ल पक्ष प्रतिपद, ये चांद के मून के मूवमेंट के हिसाब से हम चलते हैं। द न्यू ईयर बिगिंस विद द फर्स्ट डे आफ्टर द न्यू मून, न्यू मून मतलब अमावस्या, चैत्र अमावस्या जब हो जाती है तो नेक्स्ट डे जब शुक्ल पक्ष शुरू होता है उसी को न्यू ईयर के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। जनरली मार्च और अप्रैल के महीनों में जो जर्जियन कैलेंडर के हिसाब से ये नया साल आता है, ये एक्चुअली स्प्रिंग सीजन के बीच में ही आता है, तो स्प्रिंग सीजन जब भी शुरू होता है वो मार्च अप्रैल के बीच में शुरू होता है। ये चैत्र शुक्ल प्रतिपद, इस नाम से भारत में सभी लोग परिचित नहीं है, क्योंकि हर राज्य में इसका अपना अपना फेस्टिवल है और बहुत बड़े रूप में फेस्टिविटी होती है और न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वो तिथि जो होता है, जो डेट है, द डेट इज चैत्र मंथ शुक्ल पक्ष, मतलब फोर्टनाइट ऑफ ब्राइट फोर्टनाइट, और प्रतिपद का मतलब होता है फर्स्ट डे। महाराष्ट्र में इसको गुड़ी पड़वा के नाम पर सेलिब्रेट करते हैं, घर में पूजा पाठ हवन कीर्तन बहुत चलता है। कोंकणी लोग जो गोवा और महाराष्ट्र के बॉर्डर में रहते हैं, कुछ कोंकणी केरल कर्नाटक में केरल में भी रहते हैं, इसी दिन को वो संवत्सर पर्व के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। जैसे संवत्सर मैंने आपको बताया, ईयर जो अंग्रेजी में है, हमारे यहां संस्कृत में 5-7 नाम है, संवत्सर वत्सर संवत् अब्द बहुत सारे नाम से। कर्नाटक में इसको युगादि के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और आंध्र प्रदेश में उगाड़ी के रूप में। उगादि इज अ डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ युगादि, द मीनिंग ऑफ युगादि मीन्स आदि मीन्स बिगिनिंग, युग मीन्स एज, बिगिनिंग ऑफ द एज कलि युग की शुरुआत, तो युग का आरंभ के रूप में वो सेलिब्रेट करते हैं ऑल्सो एज ए न्यू ईयर। इसी तरह राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में इसको थापना, शायद मैं ठीक गलत बोल रहा हूं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट डे ऑफ चैत्र शुद्ध, वो शुद्ध मतलब शुक्र को शुद्ध बोलते हैं। और सिंधियों में इसको चेटीचंड कहा जाता है, कश्मीर लोग इसको नवरोज या नवरेह बोलते हैं, जो इस बिगड़ा हुआ रूप है, नव मतलब नव मीन्स न्यू, रोज मतलब डे, न्यू डे ऑफ द ईयर मतलब न्यू ईयर। मेरे कहने का मतलब है कि हम सेलिब्रेट करते हैं, हम बहुत सारे पकवान बनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हमें पता है कि ये एक फेस्टिवल है, पर बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं कि चेटीचंड क्या है, ये गुड़ी पड़वा क्या है, नवरोज क्या है, थपना क्या है, पता नहीं है, क्योंकि जो हमें कराते हैं उनको इतने ज्ञान नहीं होता है। मतलब बेसिकली हम अनजाने में न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, पर हमें किसी ने कोई बताता नहीं है कि इसका अर्थ क्या है और क्यों सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन हम मंदिर जाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, घर में अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से अलग अलग खान पान पकवान बनता है, पर हमें पता नहीं होता है। कुछ राज्यों में ये न्यू ईयर जो चैत्र प्रतिपद के जगह वैशाख मास के पहले दिन से शुरू करते, जो चैत्र के 15 दिन के बाद आता है वैशाख न्यू ईयर, वो 15 दिन के गैप रहता है। जैसे असमीज में वो उसको बिहू बोलते हैं, रंगोली रंगोली बिहू या बोहग बिहू, हम अभी चर्चा करेंगे ये बिहू। बिहू जो डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ विशु, विषुवत रेखा मतलब जिसको आप इक्वेशन लाइन कहते हैं, इसी दिन सूर्य वो इक्वेशन लाइन पर होता है, जिसके दोनों तरफ साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है, वो बीच में होता है, इसलिए आपको स्प्रिंग सीजन का एहसास होता है, मौसम अच्छा रहता है, ज्यादा गर्मी नहीं ज्यादा सर्दी नहीं, क्योंकि सूरज नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, जिसको हिंदी में हम भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। तो वो जो सेलिब्रेशन है विषुवत संक्रांति, तो इसको केरल में विषु संक्रांति के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आसाम में शाह को हा हो जाता है उनके बोल की भाषा में, तो आसाम को अहम बोलते हैं, तो विषु को वो विखु बोलते हैं। इसी तरह विषु संक्रांति उड़ीसा में विषु संक्रांति पणा संक्रांति के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और चेरेओबा ये मणिपुर में भी उनकी भाषा में इसका मतलब यही है कि न्यू ईयर न्यू डे के हिसाब से शुरू किया जाता है। तमिलनाडु में इसी दिन को पुथंडु या बरुला पिरप्पू के नाम से सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर के नाम पर। केरला में जो मलयालम कैलेंडर होता है उसमें इसको विशु बोलते हैं। पंजाब हरियाणा के ज्यादातर पार्ट में वैशाखी सेलिब्रेट करते हैं वैशाख मास के शुरुआती दिन। बंगाल में इसको पोयला वैशाख, पोयला मतलब पहला, फर्स्ट वैशाख न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। और जो मिथिला रीजन है, जो नेपाल का हिस्सा और बिहार के बहुत बड़ा हिस्सा है, वो उसको पहल वैशाख मतलब उनकी भाषा में वो पहला को पहल वैशाख के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरा मतलब है कि इतने सारे एक ही डे को हम अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम पर सेलिब्रेट करते हैं, पर वो सेलिब्रेशन न्यू ईयर की करते हैं, नया साल को करते हैं। हमारा न्यू ईयर सेलिब्रेशन थोड़ा अलग अंदाज में होता है, इसीलिए शायद कभी कभी नई पीढ़ी को मजा नहीं आता है, क्योंकि उसमें शराब नहीं होता है, उसमें क्लब डांस नहीं होता है, उसमें वो सब नहीं होता है, तो लगता नहीं कि ये कोई न्यू ईयर सेलिब्रेशन है। उस दिन लोग मंदिर जाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, पकवान खाते हैं, तो वो नए टाइप का, नए ईयर टाइप का लगता नहीं है, वो एक रिलीजियस फेस्टिवल टाइप का लगता है। एक्चुअली हम अनोइंगली और अनोइंगली न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। खाली इतना नहीं है, ये जो चैत्र शुक्ल प्रतिपद, द फर्स्ट डे ऑफ चैत्र, द सेकेंड हाफ, द ब्राइट हाफ, उसमें और भी बहुत सारे कारण है इसको सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि ये सृष्टि के आरंभ का दिन है। आज चर्चा करेंगे, कलयुग का भी आरंभ का दिन है। इसी दिन राम भी अपना राज्याभिषेक किया था, राम का जो कोरोनेशन हुआ था इसी दिन हुआ था। इवन मॉडर्न इंडिया में जो शिवाजी महाराज, जो बहुत बड़े भारत के योद्धा रहे, उनका भी कोरोनेशन इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन हुआ था। आर्य समाज का भी आज स्थापना दिवस है, कल जो था स्वामी दयानंद ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना भी इसी दिन किया था, और इसी सोच के साथ किया था क्योंकि न्यू ईयर है। सिखों के लिए भी अंगद देव का जन्म, जो गुरु, जो दस गुरु में से जो अठवें या नौवें गुरु, मैं थोड़ा भूल कर रहा हूं, तो उनके जो अंगद गुरु अंगद देव है, उनका भी जन्म चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हुआ था। और कली युग, जो महाभारत का समय द्वापर युग है, द्वापर युग के बाद युद्ध पंडित पांडवों के चले जाने के बाद परीक्षित और उनका बेटा जन्मेजय, परीक्षित के समय से कली युग तो चोला युग पीरियड शुरू हो जाता है, तो वो कली युग का शुरुआत भी इसी दिन हुआ था। हम आते हैं जो इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो शायद बहुत कम लोगों को पता है, या पता हो तो थोड़ा आपका रिवाइज हो जाएगा। ये जो न्यू ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, विक्रमादित्य भी उसी दिन उनका कोरोनेशन हुआ था, राम का भी हुआ था, शिवाजी का भी हुआ था, बहुत सारे लोगों का हुआ था, और हम उन्हीं के नाम से न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, पर इसको न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट करने का और एक नेचुरल कॉज है, एक नेचुरल फेनोमेना उस दिन हुई थी, ये संसार की सृष्टि उस दिन हुई थी। मतलब ऐसी हुई थी, मतलब ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है, अभी उसको आपके सामने रखेंगे कैसे हमें पता चला कि संसार उसी दिन पैदा हुआ था, उसकी चर्चा हम करेंगे। और वैसे आपको बोल के छोड़ के नहीं भाग जाएंगे। तो वो इट्स ऑल्सो ए सेलिब्रेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। दिस डे द न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द एनिवर्सरी, आपके क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स की भी आप एनिवर्सरी मनाते हैं, पर हम लोगों को पता नहीं होता है। बहुत सारे हमारे पूर्वज थे और हमें पता नहीं होता है। द यूनिवर्स गॉट क्रिएटेड बिफोर 1,960,853,160 ईयर्स। एक्यूरेट डेट भी आपको मिलेगा, कौन सा महीना, कौन से डेट, कौन से महीने में। इसको समझने के लिए थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि जो हिंदू कैलेंडर है, जो इंडियन कैलेंडर है, जो वैदिक कैलेंडर है, जो टाइम लिमिट का हमारे यहां कंसेप्ट था, और आज नहीं 3,000, 4,000, 5,000 साल पहले, that concept of unit of times is not a new concept of India. It is a concept of more than 5,000, 10,000 old concept. और उसमें क्या होता है, मैं आपको बहुत जो सटल, सबसे जो सटलेस्ट पार्ट है वहां से लेकर के आपको जो जो सबसे ग्रास पार्ट है वहां तक पहुंचेंगे। और ये चार्ट में आप देख पाएंगे, थोड़ा आप चाहे तो उसको कंपेयर कर सकते हैं। टाइम की जो सबसे सटलेस्ट फॉर्म है उसको हमारे यहां परमाणु बोलते हैं। आप देख सकते हैं वो सेकंड का कितना कितना छोटा हिस्सा है, 0.0000 आप वो हिसाब कर सकते हैं। उससे थोड़ा जो बड़ा टाइम यूनिट होता है उसको हम अणु कहते हैं। टू परमाणु इजकल टू वन अणु, और आप देख सकते हैं वो कितने सेकंड में बनता है। थर्ड पर्टिकल जो थर्ड मेजरमेंट है उसको हम कहते हैं त्रशरेणु इजकल टू सिक्स अणु, वो कितने सेकंड आप देख सकते हैं। वन त्रुटि तीन त्रशरेणु, वन वेध 100 त्रुटि, वन लव 3 वेध। तो आपको समझने लायक जो होगा वो अभी आएगा। एक निमेश 3 लव एक क्षण इज इक्वल टू 1.280 सेकेंड। यहां से आपको थोड़ी बहुत तो हजम होने लगेगा बात, क्योंकि पहले तो बड़ा लंबा लंबा था, क्योंकि सेकेंड से आपको समझ में आने लगेगा। और ये मत सोचिए कि ये कोई मैंने सोच समझ रात को सपना देखा और लिख डाला ये कहां से ले आया नहीं, ये हमारे 4,000-5,000 साल पहले से कंटिन्यूअसली चलता हुआ काम है। इवन आपके घर में जो पंडित जी हवन करने आते हैं, शादी ब्याह करने जो भी करने आते हैं, वो भी हवन करने से पहले संकल्प में ये बोलते हैं। वो अलग बात है कि आपके पंडित जी को उसका अर्थ पता नहीं, इसलिए आपको भी कभी नहीं पता चलता, पर वो रोज संकल्प में बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाद में चर्चा करेंगे। तो एक निमेश इजकल टू 3 लव, देन एक क्षण इजकल टू 3 निमेश, एक काष्ठ इजकल टू 5 क्षण इक्वल टू 6 सेकेंड, एक लघु इज 96 सेकेंड 1.6 मिनट्स या 15 काष्ठा अगर इंडियन स्टाइल में बोले, वन नाड़िका इजकल टू 15 लघु इट इज बराबर है 24 मिनट्स के, वन मुहूर्त मुहूर्त तो आप सुनते होंगे कि भाई बताओ कौन सा अच्छा मुहूर्त है पूजा पाठ करने का, वो उतना टाइम होता है 48 मिनट्स का मुहूर्त होता है। मतलब अगर आपको किसी ज्योतिषी ने बताया कि ये अच्छा मुहूर्त बुरा मुहूर्त है, वो तो पता नहीं वो अच्छा बुरा कैसे होता है, आपकी नौकरी के पैसा तो करता नहीं बुरे मुहूर्त में, मुझे नहीं लगता अच्छे मुहूर्त में आपका सैलरी बढ़ती नहीं है, पर तब भी ज्योतिषी कहते हैं अच्छा मुहूर्त है मान लेते हो, बुरा मुहूर्त है मान लेते हो। पर आपको कभी एहसास होता है बुरे मुहूर्त में आपका क्या बिगड़ता है? कुछ नहीं बिगड़ता ना, अच्छे मुहूर्त में कुछ नहीं होता है आपका, जो कुछ होता है आपकी मेहनत से और आपकी किस्मत से होता है। पर वो मुहूर्त जो होता है 48 मिनट्स का होता है। उसके बाद होता है प्रहर, प्रहर जो होता है वो 7-8 नाड़िका के बीच में होता है, एक प्रहर 3 घंटे का होता है, और पूरे दिन भर में 24 घंटे में कितने प्रहर बनेंगे 8 प्रहर होते हैं। और प्रहर शब्द तो आज भी आपके घरों में जो दादा दादी लोग बातचीत करते होंगे पहर, उसको हिंदी में पहर बोलते हैं। और एक दिवस रात्रि मतलब डे एंड नाइट इजकल टू 8 प्रहर आज मीन्स 24 आवर्स, मतलब एक 3 प्रहर में एक 3 घंटे में एक प्रहर होता है। एक पक्ष जो हम बार बार चर्चा करते हैं शुक्र पक्ष कृष्ण पक्ष, एक पक्ष में 15 कंप्लीट डेज होते हैं, और वो हाफ मंथ जिसको आप कहते हैं, 2 पक्ष में एक मास होता है जिसको आप महीना माह, ये जो माह है इसे डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ स मास, फिर उसी से महीना, एक पक्ष में 2 महीने होते हैं, दो पक्ष एक महीना बनता है, और 6 महीनों में एक ऋतु बनता है जिसको आप सीजन कहते हैं। और हमारे यहां 6 सीजन से 2 महीनों का एक ऋतु होता है, और इस तरह के 12 महीने और 6 ऋतु होते हैं 12 मंथ्स एंड 6 सीजन्स। फिर एक अयन होता है, 3 ऋतुओं का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड वन अयन, माने हाफ ईयर 180 डेज। 2 तरह के अयन होते हैं उत्तरायण एंड दक्षिणायन। उत्तरायण स्टार्ट्स फ्रॉम जनवरी 14th, वी कॉल्ड इट मकर संक्रांति, टू जुलाई 22 विच इज कॉल्ड कर्क संक्रांति। ये 6 महीने जिस समय सूर्य थोड़ा नॉर्थ की ओर झुकता हुआ उसकी मूवमेंट होता है, उस दिन बड़े होते हैं, गर्मियां होती हैं उन दिनों। जुलाई 22 तारीख से दिन छोटे होने लगते हैं, उसको हम कहते हैं दक्षिणायन, सूर्य थोड़ा साउथ की ओर झुक करके जाता है और दिन छोटे होने लगते हैं। फिर जनवरी 14 को हम चेंज कर देते हैं। अमेरिका में भी आप सेलिब्रेट करते हैं डे टाइम और एक घंटा कम बहुत करना, पर वो एक आर्टिफिशियल है, वो लाइट सेविंग सेलिब्रेट करते हैं। वो एक्चुअली जब बंद, ये जो अभी शुरू हुआ फरवरी लास्ट वीक या मार्च फर्स्ट वीक में आप करते हैं कि एक घंटा पीछे चला गया, तो सुबह उठो तो 6 बजे तो बिल्कुल अंधेरा होता है। आर्टिफिशियल तो यही चीज होता है, 10-15 दिन महीने भर के बाद जाकर के आपको उजाला देखने लगता है। और दो अयन, दो उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों मिलके एक संवत संवत्सर अब जो भी कहिए मतलब वन ईयर बनता है। वन ईयर मीन्स संवत संवत्सर अब द एनीथिंग। और इंडियन जो जो टाइम यूनिट है उसमें 360 डेज इज कॉल्ड वन ईयर एंड 360 डेज इज कॉल्ड वन ईयर एंड वन ईयर इज इक्वल टू वन देव देव दिनम। देव दिनम मीन्स देव डे, इट्स ए टर्मिनोलॉजी। एक देव ईयर, वन देव ईयर इज कॉल्ड 360 ईयर्स, मतलब 360 नॉर्मल जनरल ईयर्स। फिर ये हो गया आपके बहुत सूक्ष्म एलिमेंट से लेकर के आपके वर्ष तक। अब आते थोड़ा जो टाइम का जो बड़ी बड़ी मेजरमेंट है, जो बड़ा बड़ा जो हमने मेजर किया है उसको हम युग बोलते हैं। और चार युग बांटा जाता है, कली युग, द्वापर, त्रेतया, सत्य। ध्यान रखिए हमारे मैथमेटिक्स में या एस्ट्रोनॉमी में जब ये टाइम यूनिट शुरू हुआ, इनको जो नाम दिया गया कली युग, द्वापर, त्रेता, इनका आपको कली युग के बारे में जो ज्ञान है, द्वापर के बारे में जो ज्ञान है, ऐसा कोई इससे मतलब नहीं है। कली, त्रेता, द्वापर, सत्य, दीज आर फोर टर्मिनोलॉजिकल नेम्स फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि कली युग में पाप ज्यादा बढ़ जाता है, वेद नहीं पढ़ना चाहिए, सारे बुरे काम करना चाहिए क्योंकि कली युग है, गुरुओं की सेवा में जाइए क्योंकि कली युग है, जैसा कि हमें सुनाया जाता है। द्वापर में पाप थोड़ा कम होता है, सत्य युग में सबसे ज्यादा पुण्य होता है, ये माइथोलॉजी है जिसमें मीत भरा है, स्टोरीज है। पर कली, सत्य, द्वापर, त्रेतया वगैरह ये मेजरमेंट के अलग अलग नाम्स होते हैं, क्योंकि जब आप प्लैनेट्स को या सोलर सिस्टम को मेजर करने की कोशिश करते हैं तो आपको किलोमीटर माइल से तो नहीं मेजर कर सकते ना, आपको कितने जीरो लगानी पड़ेगी, अब तो लाखों जीरो ही लगाते फिर हो गए। इसीलिए क्या किया, तो उन्होंने कहा कि जैसे आप पढ़ते हैं लाइट ईयर्स, भाई यहां से दूसरे प्लैनेट तक कितना दूरी है, दूसरे स्टार तक कितना दूरी है, एक स्टार से दूसरे स्टार तक, तो आप हिसाब लाइट ईयर से हिसाब लगाते हो। लाइट ईयर में ना लाइट होता है ना ईयर होता है, इट्स नेम ऑफ द मेजरमेंट जिसमें लाइट पर सेकेंड इतने किलोमीटर इतने माइल गति करता है, उसके हिसाब से आप उसको काउंट करिए, एक मिनट में कितना बनेगा, एक घंटे में कितना बनेगा, एक दिन में कितना बनेगा और एक साल में कितने बनेगा, तो उतना मेजरमेंट होता है। लाइट ईयर में लाइट और ईयर का कोई लेन देन नहीं है। इसी तरह कली युग में कली का कोई लेन देन नहीं, एक नाम है, युग का एक मेजरमेंट है। तो कली युग कितना है, 4,32,000 जो यूनिट ईयर्स का जो यूनिट है उसको कलियुग बोलते हैं। और उसको देववर्ष में अगर आप ट्रांसलेट करें तो वो बनेगा 1,000 देववर्ष। और उसका दो गुना जो 2 times मोर जो होता है उसको हम द्वापर कहते हैं। 3 गुना जो 3 times जो मेजरमेंट होता है उसको हम त्रेता कहते हैं। अगर वो 4 times बन जाए हम उसको सत्य कहते हैं। और एक युग से दूसरे युग को जो ट्रांजिशन पीरियड होता है उसके लिए हमने मार्जिन हर थाउजेंड में पर थाउजेंड वन हंड्रेड ये जो आप थाउजेंड ईयर्स पढ़ रहे हो थाउजेंड देव ईयर्स, एक देव ईयर इज इक्वल टू 360 नॉर्मल ईयर्स, 360,000 वर्ष कलियुग का होता है पर 432,000 क्यों? क्योंकि 100 वर्ष ट्विलाइट पीरियड होता है, ट्विलाइट पीरियड होता है जब वो दूसरे युग से कलियुग को आने में जितना टाइम लगता है, फिर कलियुग से जब ट्रांजिशन होगा दूसरे युग के लिए जो टाइम लगता है, जैसे कि आप दिन को भी मान लीजिए आपका आजकल 5:30 बजे या 6 बजे 5:30 बजे वो थोड़ा लाइट होने लग जाते हैं, पर ऐसा नहीं कि वो पूरा दिन होता है, आप उसको सुबह कहते हो, दिन नहीं कहते, वो सुबह क्या चीज है, वो संध्या समय है, संध्या का मतलब संधि का समय है, जॉइंट पीरियड है, ट्विलाइट पीरियड है, तो उसके लिए जैसे शाम को भी अचानक अंधेरा नहीं हो जाता है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे होने लगता है, तो उसको आप उसको भी आप संध्या कहते हैं, तो संस्कृत में संध्या कहते हैं जो जॉइंट पीरियड होता है, इसीलिए कहते हैं कि जो पूजा पाठ अच्छा काम है वो संध्या के समय करना चाहिए। तो 100-200 वर्ष 200 डिवाइन एज देव ईयर्स प्लस 1000 नॉर्मल कलियुग का जो एज है, तो 1200 देव ईयर्स इजकल टू 432,000 ईयर्स। द्वापर उसका टू टाइम है, 2000 उसका एक्चुअल टाइम है, 200 साल उसका ट्विलाइट पीरियड है जो बिगिनिंग के लिए, जब वो द्वापर से फिर दूसरे युग का जो ट्रांसफॉर्मेशन हम ट्रांजिशन मानते हैं वो 200 साल, तो 400 साल ट्विलाइट पीरियड में चला जाता है, तो 864,000 नॉर्मल ईयर्स इज कॉल्ड टू वन द्वापर युग। द सेम मैनर 1296,000 ईयर्स इज कॉल्ड त्रेता युग, अगर देव ईयर में कन्वर्ट करें तो 3600 देव ईयर्स, देव वर्ष जिसको आप बोलते, ये देव वर्ष में देवताओं का कोई रोल नहीं है, ये डिवाइन ईयर ट्रांस, बहुत सारे अंग्रेजी में लिखा होगा डिवाइन ईयर, इट्स नॉट ए डिवाइन ईयर, इट्स नेम इज देव वर्ष, इट्स नॉट दैट देव का वहां ट्रांसलेशन नहीं है, उसका नाम है, वह डिवाइनिटी के साथ उसका कोई मतलब नहीं है। सत्य युग का ट्रांसलेशन मत करिए कि एज ऑफ ट्रूथ, वो उसका नाम है। तो चारों युगों को का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम कहते हैं महायुग। एक महायुग इज कॉल टू चतुर्युग, चतुर्युग मीन्स चार युगाज, इज कॉल टू 12,000 देव वर्ष इज कॉल टू 43,20,000 साल बनेगा। अब थोड़ा और बड़े रूप में जाइए, आपको मैं लेकर चलूंगा क्रिएशन की तक पहुंचेंगे कि सृष्टि को बने हुए कितना वर्ष हुआ है, तो थोड़ी सी आपको पेशेंस रखेंगे। तो चार महायुग को एक महायुग, चार युगों को एक महायुग बोलते हैं, और 71 महायुगाज आर कॉल्ड वन मन्वंतरा। तो इस तरह के 14 मन्वंतराज होते हैं, जैसे युगों का नाम है कली द्वापर त्रेता सत्य, तो मन्वंतरों का भी नाम है, जैसे 14 का नाम है, तो मैंने वो नोट नहीं किया बोल देंगे, तो जैसे अभी जो मन्वंतर चल रहा है कलियुग है, पर जो मन्वंतर चल रहा है विवस्वान मन्वंतर चल रहा है, वैवस्वत मन्वंतर चल रहा है, और 14 मन्वंतर इज इक्वल टू वन कल्प, वन कल्प इक्वल टू वन ब्रह्म दिनम, ब्रह्म दिनम मीन्स ब्रह्म डे, इट्स नॉट डे ऑफ ब्रह्मा, जैसे आप माइथोलॉजी के सुनते हैं कि ब्रह्मा इतने दिन तक जगे रहते हैं और बाकी सो जाते हैं, नहीं, ये माइथोलॉजी, ये उसका नाम है ब्रह्मदे, ब्रह्म दिनम। सिर्फ इसी तरह एक कल्प इक्वल टू वन ब्रह्म नाइट। ये डे नाइट का कंसेप्ट क्यों कि अर्थ की जो जो एज है, जो धरती का या प्लैनेट की जो एज है वो एक कल्प होता है। एक कल्प करीब करीब वो 4 बिलियन कितना होता है आप काउंट करेंगे तो आपको आपको पता चलेगा। और एक जब प्लैनेट द डिसोल्यूशन में चला जाता है द पीरियड ऑफ डिसोल्यूशन इज द सेम द क्रिएशन द एज ऑफ क्रिएशन द एज ऑफ डिसोल्यूशन इज ऑलवेज सेम। दिन जितना टाइम का होता है रात उतने ही टाइम का होता है। तो जो प्लैनेट्स की जो एज है वो कल्पों से डिसाइड होता है क्योंकि और आगे चलते हैं। दो कल्प मीन्स वन ब्रह्म अहोरात्र, अहोरात्र मीन्स डे डे नाइट, टू कल्प। तो अब मतलब दो कल्प में एक ब्रह्म दिन होता है, दिन रात मिला के। तो 360 कल्प बनेंगे तो एक ब्रह्म ईयर बनेगा। इसी तरह जो 100 ब्रह्म ईयर होता है, 100 ब्रह्म ईयर इज द लाइफ स्पैन ऑफ एवरी क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। और जैसे मैंने कहा क्रिएशन पीरियड का जितना टाइम होता है डिसोल्यूशन पीरियड का भी उतना ही टाइम होता है। रात और दिन का बराबर टाइम होता है, थोड़ी बहुत आगे पीछे रहता है। तो इस संसार का जो इट इज नॉट दैट ऑफ दिस यूनिवर्स, एवरी द लाइफ स्पैन ऑफ एवरी यूनिवर्स एंड एवरी साइकिल इज 100 ब्रह्म ईयर्स। ऑल्सो द लाइफ स्पैन ऑफ एवरी डिसोल्यूशन इज 100 ब्रह्म ईयर्स। जब प्रलय की स्थिति में सारा संसार उतने ही दिन के लिए रहेगा और सृष्टि की स्थिति में इतने ही दिन के लिए रहेगा। द यूनिवर्स बिगिन्स फ्रॉम ए पॉइंट विथ ए बैंग। जो वो तो पहले भी हमने एक बार डिस्कशन किया था कि ये यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, हमारा क्या फिलोसफी है, भारतीय दर्शन क्या उसको मानता है। तो जो बैंग थ्योरी से हम मान लीजिए लेते हैं, उससे पहले डार्क एनर्जी से भरा हुआ संसार, जब जो सृष्टि की प्रक्रिया शुरू होने लगी, व्हेन द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन स्टार्टेड विथ ए बैंग, we count that day the time from that bang to the dissolution to the dissolution that take 100 kalpa 100 brahma day। मैं इसको थोड़ा और क्लियर करूं। जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं वो 3 लेवल पर होता है। एक प्लैनेट का एज होता है, एक लेवल सोलर सिस्टम का, एक एज सोलर सिस्टम का होता है और एक एज होल यूनिवर्स का होता है। कभी कभी इसमें भी हम थोड़ा मेसअप कर जाते हैं। पृथ्वी का जो आयु है वो अलग है, वो छोटा है, वो हमारे भारतीय हिसाब से 4.32 बिलियन करीब है। सोलर सिस्टम का एक एक उससे थोड़ा ऊपर होता है और जो लास्ट है जो 100 ब्रह्म ईयर्स है वो यूनिवर्स का पीरियड होता है। द पीरियड ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू देम। अब आते हैं जो आपके हवन में पूजा पाठ में आपने कभी सुना होगा देखा होगा कि जो पुरोहित हैं पंडित जी हैं वो हवन शुरू करने से पहले संकल्प कराते हैं। वो क्या बोलते हैं, ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे। क्या बोला देखिए, उसने बोला ब्रह्म वर्ष के द्वितीय प्रहर में। प्रहर का मतलब क्या है, 3 आवर्स है ना। तो द्वितीय प्रहर का मतलब होता है सेकेंड प्रहर। अगर दिन शुरू होता है 6 बजे से तो 6 से 9 फर्स्ट प्रहर है, फिर 9 से 12 सेकेंड प्रहर है, द्वितीय प्रहर का अर्ध है। अर्ध मतलब 10:30 करीब। तो ब्रह्म दिन का, ब्रह्म वर्ष का ये द्वितीय प्रहर चल रहा है। अब काउंट करेंगे कितना बनेगा वो अभी हम बाद में पहुंचेंगे, वहां तक पहुंचेंगे। द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वत मन्वंतर, वैवस्वत 7th मन्वंतर होता है। वैवस्वत मन्वंतरे 28 तमे कलियुगे, 28th कलियुग चल रहा है। अष्टाविंशति, और 28 कलियुग में भी 5117 वर्ष अब तक बीत चुके हैं, वगैरह वगैरह आगे आप देखेंगे। तो इस तरह के जो हमारा इंडियन कैलकुलेशन है कि सृष्टि को हुए आज के तारीख में 1 बिलियन इतने साल हो चुके हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात करें, खत्म करें क्योंकि समय हो रहा है। ये देखिए, ये तो मुझे कहीं गूगल में मिल गया, फेसबुक में किसने डाला था जो न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हुए और जो न्यू ईयर ओरिजिनली, अच्छा और एक चीज है, ये जो इंडियन न्यू ईयर है ये बड़ा, जैसे मैंने शुरू में बताया कि बड़ा नेचुरल होता है, इवन नेचर भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करता है, स्प्रिंग सीजन होता है पूरे ईस्टर्न एशिया में, ये ऐसा नहीं कि भारत में, भारत नेपाल वर्मा श्रीलंका से लेकर के वो आपके कंबोडिया थाईलैंड तक ये फैला हुआ है, ये न्यू ईयर यही दिन सेलिब्रेट करते हैं। होता क्या है देखिए, चैत्र शुक्ल कृष्ण प्रतिपदा को मौसम कैसा होता है देखिए, धूम कैसा होता है देखिए, हमारा जो वर्ष शुरू होता है, दिन शुरू होता है सुबह से, और जो जो जॉर्जियन कैलेंडर में आपका दिन शुरू होता है रात को 12 बजे से, देखिए रात को 12 बजे क्या हालत होती है। और जो जनवरी 1 को मौसम कैसा होती है देखिए, सारे ठूंठे पेड़ खड़े होते हैं और आप 2-4-15 जैकेट पहनकर घूमते हैं, और मार्च के स्प्रिंग सीजन में मौसम कैसा होता है देखिए, और जब जनवरी 1 को सेलिब्रेट करने के बाद कैसे मिलते हैं देखिए, नीचे वाला देखिएगा। इसीलिए तो हिंदुस्तानी, नए हिंदुस्तानी लोगों को ये मजा ही नहीं आता, ये हिंदुस्तानी नया साल ना मनाने की चाहते हैं ना कभी याद रखना चाहते हैं। ये कोई नया साल है जिसमें पी करके ना पड़ा मिले, कोई मंदिर जाओ पूजा करो प्रसाद खाओ, तो फिर हम देशों में जो मनता है अलग अलग राज्यों में, तो फिर हम उसको रिलीजियसली मनाते हैं। तो सज्जन देवियों, ये आपको पता होना चाहिए आपके देश में कितने साइंटिफिकली सोचा समझा न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता था, आज भी लोग अलग अलग राज्यों में करते हैं। आप इसे याद रखें, आप उसको खूब, जैसे आप जनवरी 1 के दिन सेलिब्रेट करते हैं, लोगों को पार्टियां देते हैं, लोगों को ग्रीटिंग्स करते हैं, आप कोशिश करें अपने न्यू ईयर के दिन भी ग्रीटिंग्स करें, पार्टियां दें, लोगों से मिले जुले सेलिब्रेट करें। आप ही सेलिब्रेट करेंगे, कोई चाइनीज, कोई ब्रिटिश, कोई फ्रेंच आपके न्यू ईयर सेलिब्रेट करने नहीं आने वाला, कोई अमेरिकन, आप ही सेलिब्रेट करेंगे। चाइनीज अपने न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, थाई वाले अपने सेलिब्रेट करते हैं, दुनिया का हर जो एंशियंट कल्चर वाला देश है वो अपना अपना सभ्यता सेलिब्रेट करते हैं। हमें भी करना चाहिए, विथ प्राउड हमें प्राइड करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें दूसरों को बोल लेना चाहिए, दूसरों को भी करें अपनी चीजों को भी करें। हम दिवाली में मनाते हैं, हम क्रिसमस में मनाते हैं, उसमें क्या है, हम दोनों को सेलिब्रेट करें क्योंकि अमेरिका में रहते हैं। बहुत बहुत आप लोगों को अभिनंदन है आपके नए वर्ष के लिए, आपके अपने नए वर्ष के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां, धन्यवाद, ओम शांति।